हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उस लड़की ने ऋषभ के हाथ में पहने ब्रेसलेट की ओर इशारा करते हुए कहा, अब देखो, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ के ब्रेसलेट पर आर लिखा हुआ है। मतलब तुम्हारा नाम जरूर आर से होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग अपने प्रेमी के नाम का पहला अक्षर तो जरूर पहनते हैं। ऋषभ को उस लड़की से बात करने में कुछ रुचि आई। उसने पूछा, अच्छा, ये कैसे पता चला तुम्हें? लड़की ने थोड़ा अट्टाड़ में आकर कहा, सिंपल, तुम्हारे अट्टाड़ से। ऋषभ ने फिर अपने अट्टाड़ में आते हुए कहा, लेकिन तुम गलत हो। जब मुझे अपना प्रेमी और भावी जीवन साथी मिला तो मैं उसके नाम का अक्षर टैटू भी बनवा सकता था। ये ब्रेसलेट या लॉकेट पहनना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक खास व्यक्ति के लिए है। वो लड़की ऋषभ की बात से प्रभावित होकर बोली, काफी प्रभावशाली, एक महिला के प्रति वफादार पुरुष, हाँ, आजकल तो देखने को नहीं मिलते। ऋषभ ने उस लड़की की ओर तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, बिल्कुल मिलते हैं, बस तुम लोग शायद सही जगह पर नहीं देखती हो। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि वो महिला ही हो, मैंने व्यक्ति और जीवन साथी कहा है, जो कोई भी हो सकता है। लड़की ने बुरा मुंह बनाते हुए कहा, ओह, तो तुम समलैंगिक हो, मतलब मैं इतनी देर से बेकार ही मेहनत कर रही हूँ। ऋषभ ने उसी की भाषा में जवाब दिया, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मेरे पीछे आओ, और मैं समलैंगिक हूँ या उभयलिंगी, जो भी हो, ये मेरी यौनिकता है, तुम्हारी समस्या नहीं, तो तुम इस तरह का चेहरा क्यों बना रही हो? ऋषभ की बात सुनकर ऋषभ ने तुरंत माफ़ी मांगी, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन अगर तुम उभयलिंगी हो तो हमारे पास एक मौका है। ऋषभ ने सीधे मना कर दिया, नहीं, क्योंकि मुझे कोई रुचि नहीं है, सॉरी। इतना कहकर ऋषभ वहां से निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो लड़की अपनी जगह खड़ी रही और उसे जाते हुए देखती रही। वहां से जाते हुए ऋषभ की पीठ देखकर लड़की ने कामना की, वो वाकई दिलचस्प और आकर्षक व्यक्ति है, मुझे आशा है कि मुझे भी उस जैसा कोई मिल जाएगा। आगे जाने के बाद ऋषभ ने एक बार भी पीछे मुड़कर उस लड़की की ओर नहीं देखा। वो लड़की भी वहां से अपने दोस्तों के साथ चली गई। ऋषभ क्लब के दरवाजे के पास पहुंचा। वो बाहर निकलने ही वाला था कि एक पल के लिए रुककर उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। वो उन्हें बिना बताए जाने वाला था, लेकिन फिर उसे लगा कि वे बाद में फोन करके उसे परेशान करेंगे और पूछेंगे कि वो अचानक कहाँ चला गया, इसलिए वो कुछ कदम अंदर की ओर आया। उसने देखा कि उसके दोस्त स्टेज पर लड़कियों के साथ नाचने में व्यस्त हैं। उसने उन्हें आवाज़ भी लगाई, लेकिन वहां पर संगीत बहुत तेज होने के कारण ऋषभ की आवाज़ उसके दोस्तों तक नहीं पहुंची। ऋषभ ना चाहते हुए भी स्टेज की ओर आया, लेकिन तभी उसकी नज़र स्टेज के पास वाले VIP लाउंज एरिया में बैठे एक परिचित शख्स पर पड़ी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये वो नहीं हो सकता, मैं शायद ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो यहाँ कैसे हो सकता है, ऐसी जगह पर? इतना सोचते हुए ऋषभ अपने दोस्तों के बारे में भूल पर उस ओर बढ़ गया और ध्यान से उस लड़के को देखने लगा। क्लब की रोशनी में दूर से उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब आया, ऋषभ का शक यकीन में बदलता जा रहा था। काफी नज़दीक पहुंचकर ऋषभ ने देखा तो वो कोई और नहीं, समर था। दूर से भी उसे समर ही लगा था। वो वहां 7 लड़के लड़कियों के समूह से घिरा बैठा था और उन सभी के बीच काफी असहज लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां बैठना नहीं चाहता, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। उस छोटी गोल कांच की मेज पर कई ड्रिंक रखे हुए थे और उनमें से ज्यादातर लोगों के हाथ में एक ग्लास भी था, लेकिन समर बस उन लोगों से बातें कर रहा था और बार बार कहने पर भी ड्रिंक करने में हिचकिचा रहा था। समर को ऐसी स्थिति में देखकर ऋषभ को सब कुछ ठीक नहीं लगा। वो वहां रुक गया और थोड़ा आगे बढ़कर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा, क्योंकि समर जहां बैठा था वो VIP रिजर्व एरिया था और वहां संगीत भी धीमा था, इसलिए ऋषभ को उनकी बातें कुछ कुछ सुनाई दे रही थीं। समर के बगल में बैठे काफी नशे में दिख रहे लड़के ने कहा, चलो समर, बच्चे की तरह बर्ताव मत करो, तुम अब बड़े हो, बस हमारी तरह अपनी जिंदगी का मजा लो। इतना बोलकर उस लड़के ने अपना ग्लास समर की ओर बढ़ाया। समर ने ग्लास लेने से मना करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और मैं पहले से ही मजा ले रहा हूँ, ड्रिंक की जरूरत नहीं है। समर के मना करने पर उसके दोस्त के बगल वाले लड़के ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये बस एक छोटा बच्चा है, बेकार में इसे अपने साथ लाए। समर ने सफाई देने की कोशिश की, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए वहाँ बैठी एक लड़की बोली, हाँ हाँ ठीक है समर, कल तुम्हें पार्क में घुमाने ले चलेंगे और फिर रोलर कोस्टर राइड। उस लड़की को ताली देकर हंसती हुई दूसरी लड़की ने कहा, हाँ रिया और कैंडी भी दिलाएंगे, उसके साथ क्या लोगे, फ्रूटी या फिर स्ट्रॉबेरी मिल्क? उन सब की ऐसी बातें करने पर वे सब समर का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगे। समर को अब उन लोगों के बीच बहुत ही अपमानित महसूस हो रहा था। वो अब और नहीं सुन पाया और थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, ओ बस करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं करता, बस इतना ही, बाकी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं भी तुम सबकी उम्र का ही हूँ। उसकी बात पर वहाँ बैठी एक और लड़की रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मिडिल क्लास लोगों की यही समस्या होती है, हम हाई क्लास वालों से दोस्ती तो कर लेते हो लेकिन कभी भी हमारे जैसे बन नहीं पाते। उन सबकी उकसाने वाली बातें सुनकर समर भी उनकी बातों में आता हुआ बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है रिया, तुम लोगों जैसा बनने में क्या है, और बताओ कैसे प्रूव होगा ये, ड्रिंक करके? उसके सामने बैठी अमृता ने कहा, हाँ बिल्कुल, और नहीं तो क्या, देखो हम लोग अमीर गरीब का फर्क नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम हमारे साथ रहो तो हमारी तरह डेयरिंग बनो, ये क्या हर चीज से डरते रहते हो। समर उसकी बात बीच में बोला, मैं नहीं डरता किसी भी चीज से, लेकिन, रिया उसकी बात काटते हुए बोली, कोई लेकिन वेकिन नहीं, चलो अभी रणवीर के साथ कंपटीशन करो और तुम दोनों में से जो ये टेकेला के 3 ग्लास जल्दी खत्म कर पाया वही होगा आज का विनर। रिया की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग समर और रणवीर का नाम लेकर चीयर करने लगे। अपनी नाम की चीयरिंग सुनकर समर ने इधर उधर देखते हुए निगाहें झुकाई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने सामने रखे ग्लास को मजबूती से पकड़ लिया। वहाँ मौजूद सारे लोग उसके और रणवीर की ओर देख रहे थे। रणवीर एक ग्लास उठाकर पीने लगा, लेकिन समर अपने मन में कुछ सोचता हुआ उन सब की ओर और फिर ग्लास की ओर देख रहा था। रिया ने उसे याद दिलाते हुए कहा, क्या सोच रहे हो सैम, चलो नहीं तो तुम्हारी शुरू करने से पहले ही रणवीर जीत जाएगा। उसकी बात सुनकर भी समर कुछ नहीं बोला और हल्के से अपना सिर हिलाते हुए उसने वो ग्लास उठा लिया। वो ड्रिंक पीने ही जा रहा था कि रिया, रणवीर, अमृता और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया, क्योंकि उन्होंने समर को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर लिया था। एक गहरी सांस लेकर अपने मन में कुछ सोचते हुए समर ने वो ग्लास अपने मुंह से लगाया और वो ड्रिंक पीने ही वाला था कि तभी उसे अपने हाथ पर बहुत मजबूत पकड़ महसूस हुई और उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। समर के सामने हल्का सा झुककर खड़े ऋषभ ने उसका ग्लास अपने हाथों से पकड़े हुए उसकी ओर गुस्से में कहा, रुक जा समर, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की, और तुम क्यों कर रहे हो जब तुम ये करना नहीं चाहते।
समर ने अपनी आंखें बंद करके फिर खोली और वो इस बात पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो सच में ऋषभ है और वो जो कुछ भी कह रहा है वो एक तरह से सच है, इसलिए समर कुछ भी बोल नहीं पाया। लेकिन ऋषभ ने उसके हाथ से वो गिलास लेकर वापस मेज पर पटक दिया और फिर से उसी तरह गुस्से में बोला, तुम लोगों को पता है ना, इस तरह से किसी नाबालिग को जबरदस्ती शराब पीने के लिए उकसाना अपराध है। ऋषभ की बातें सुनकर उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बात का जवाब दे पाए। लेकिन रणवीर ने हिम्मत करते हुए कहा, हम किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से यहाँ आया है। जब रणवीर ने इतना कहा तो अमृता भी उसके पीछे बोल पड़ी, और हाँ ये खुद ही ड्रिंक कर रहा है, चाहे तो इससे पूछ लो, और वैसे भी तुम कौन हो जो हमें इस तरह से डरा धमका रहे हो। इन दोनों की बातें सुनकर ऋषभ ने गुस्से में उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, और समर तुम अकल नहीं है तुम्हें जो ऐसे किसी की भी बातों में आ जाते हो, और ये क्या कर रहे थे तुम? ये बात उसने समर की ओर देखते हुए पूछी। समर जो इतनी देर से ऋषभ के हरकतें देख रहा था एकदम खाली चेहरे के साथ खड़ा था। उसे पहले तो ऋषभ के वहां होने की उम्मीद ही नहीं थी, और जब वो वहां था तो समर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके प्रति इतना रक्षात्मक व्यवहार क्यों कर रहा है। उसकी पूरी बात सुनकर आखिरकार समर बोला, ऋषभ मुझे लगता है तुम अति प्रतिक्रिया कर रहे हो, मैं खुद भी अपना ध्यान रख सकता हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ऋषभ ने उसे डांटते हुए चुप करवाया, चुप करो तुम, वो तो दिख ही रहा है मुझे कितना ध्यान रखते हो तुम, और ये लोग किस तरह से तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, और तुम इनकी बातों में आकर वो कर रहे हो जो नहीं करना चाहते। उसकी बातें सुनकर समर एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि एक तरह से ऋषभ सही कह रहा था, लेकिन फिर भी वो सफाई देते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे दोस्त। उसकी ये बात सुनकर ऋषभ ने लगभग खा जाने वाली नज़रों से उसकी ओर देखा तो समर आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। क्रमशः